हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 88 शिविका ने रास्ते में करण को पूरी बात बता दी थी। वो ऋषभ को लेकर बहुत परेशान थी और करण उसकी परेशानी समझ रहा था, इसलिए करण ने उसे अपने कॉल के बारे में कुछ नहीं बताया। वो भी काफी परेशान लग रहा था और यहाँ से कहीं निकलने वाला था। वो ये बताने के लिए ही ऑफिस आ रहा था, लेकिन शिविका उसे ऑफिस के बाहर मिल गई। उसने सोचा कि पहले ऋषभ से मिलाता है, उसके बाद अपनी समस्या सुलझाएगा। कुछ देर में वे लोग अस्पताल पहुंचे। रिसेप्शन पर उन्होंने ऋषभ के बारे में पूछा। उन्हें पता चला कि वो एक सामान्य वार्ड में है, क्योंकि उसे ज्यादा चोटें नहीं आई थीं। रिसेप्शनिस्ट की ये बताते ही शिविका ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, वो ठीक है। तुम शायद सही कह रहे थे करण, मुझे भी ऋषभ पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जैसे तुम अपने भाई पर देते हो। उसके बात सुनकर करण ने धीमी आवाज में बुदबुदाया, कहाँ ध्यान रखता हूँ मैं अच्छे से, अगर ध्यान रखता तो। शिविका उसकी ये बात नहीं सुन पाई। वो रिसेप्शनिस्ट से ऋषभ के कमरे का नंबर और फ्लोर पूछने में व्यस्त थी, लेकिन उसके कान में करण की कुछ आवाज पड़ी, इसलिए करण की तरफ देखते हुए उसने पूछा, क्या हुआ, कुछ कहा क्या तुमने? करण ने विषय बदलते हुए पूछा, नहीं नहीं कुछ नहीं, चलो वार्ड नंबर पता चल गया ना? शिविका ने हाँ में सिर हिलाया। वे दोनों लिफ्ट की तरफ बढ़ रहे और दूसरे फ्लोर पर स्थित कमरा नंबर 18 में आ गए, जहाँ ऋषभ था। उन्होंने जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खोला, देखा कि वहाँ नर्स और अस्पताल के स्टाफ के अलावा दो लोग और हैं। उनमें से एक बिस्तर पर लेटा हुआ है, उसके बाएं हाथ पर पट्टी बंधी है और उसका चेहरा दिख रहा है। वो कोई और नहीं, ऋषभ था, लेकिन दूसरे लड़के की सिर्फ पीठ दिख रही थी। शिविका ने दरवाजे से अंदर आते हुए पूछा, क्या हुआ है तुम्हारे हाथ को ऋषभ, और ये कौन है? शिविका की आवाज़ सुनकर वो लड़का पीछे मुड़ा। वो ऋषभ को सहारा देकर बिठाने में मदद कर रहा था। ऋषभ प्यार से उसकी तरफ देख रहा था और शिविका की आवाज़ सुनने तक उसका ध्यान दरवाजे की तरफ नहीं गया। वो कोई और नहीं, समर था, जो पिछली रात से ही ऋषभ के साथ रुका हुआ था उसकी मदद के लिए। ऋषभ के बाएं हाथ पर बड़ा सा बैंडेज बंधा हुआ था, जिसकी वजह से वो ज्यादा काम खुद से नहीं कर पा रहा था। किसी को भी समर के वहाँ होने की उम्मीद नहीं थी, खासकर करण को। वो हैरान होते हुए बोला, समर, समर तुम यहाँ? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है घर पर सब कितने परेशान हैं? आज पहली बार घर से मेरे पास कॉल आया, वो भी तुम्हारे लिए। पता है, तुम्हारे लिए तब से मैं भी परेशान हो गया था। फिर कहाँ चले गए हो तुम रात से? पता है, मैं यहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाने वाला था। क्या कर रहे हो तुम यहाँ? करण के बाद एक इतने सारे सवाल पूछने पर समर को समझ नहीं आया कि वो पहले किसका जवाब दे। उसे बहुत कुछ बताना और समझाना था, लेकिन करण की बातें सुनकर समर कंफ्यूज हो गया और वो ऋषभ की तरफ इस उम्मीद में देखने लगा कि शायद ऋषभ कुछ बताना शुरू करे। लेकिन ऋषभ डरा हुआ था। उसकी हरकतों की वजह से शिविका पहले ही उससे नाराज रहती थी। जो कुछ भी हुआ था उसमें उसके पिता उसकी ही गलती निकालेंगे, इसलिए वो कोई भी सफाई देने से पहले 10 बार सोच रहा था। शिविका ने अब तक उससे ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं था, लेकिन करण के सवाल सुनकर शिविका भी हैरान रह गई, क्योंकि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था और करण ने उसे बताया भी नहीं था। वो थोड़ी नाराजगी से करण की तरफ देखते हुए बोली, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया इस बारे में, और कब पता चला तुमको कि समर घर पर नहीं है? शिविका की नाराजगी दूर करते हुए करण ने उसे पूरी बात समझाई। अरे बस अभी पता चला, जब तुम लिफ्ट से पहले ऊपर चली गई थीं, मुझे घर से फोन आया था। समर की माँ का कॉल था और वो बहुत परेशान थी समर को लेकर कि वो कल से घर नहीं आया है। मैं तुम्हें वही बताने के लिए ऊपर ऑफिस में आ रहा था, लेकिन तुम खुद ही इतनी परेशान थीं और अस्पताल आ रही थी ऋषभ से मिलने, तो मैंने सोचा पहले आपका काम निपटा लें और फिर समर को ढूंढ लेंगे, लेकिन ये तो यहाँ पर ही मिल गया। शिविका ने थोड़ा शांत होते हुए कहा, ओह अच्छा, अभी पता चला फिर ठीक है, लेकिन फिर भी कार में तुम मेरे साथ ये बात शेयर कर सकते थे। खैर कोई बात नहीं, तुमसे तो बाद में निपटती हूँ मैं, लेकिन अभी इस ऋषभ की क्लास लेने दो मुझे। बताओ ऋषभ, अब बोलना शुरू भी करो, किसी मुहूर्त का इंतजार कर रहे हो क्या? और फिर वो घूर कर ऋषभ की तरफ देखने लगी, अपने जवाब के इंतजार में। अपने दोनों हाथ बांधकर शिविका बारी बारी करण, ऋषभ और समर को घूरती रही। फिर उसकी नजरें ऋषभ पर रुक गईं। तभी करण चुपचाप खिसकते हुए समर के बगल में आकर खड़ा हो गया और धीरे से उसके कान में बोला, क्या चल रहा है, ये सब कुछ बताओ, तुम्हें और ऋषभ को कहाँ मिला? समर ने भी धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, जिससे सिर्फ करण को ही उसकी बात सुनाई दे। भैया, वो कल मैं अपने दोस्तों के साथ। ऋषभ के अभी भी चुप रहने पर शिविका ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, ऋषभ, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बोलोगे? कार कहाँ है तुम्हारी, और तुम यहाँ अस्पताल में कैसे पहुँचे, और तुम्हारे हाथ पर ये चोट? जल्दी से सब समझाओ, इतना पेशेंस नहीं है मेरे पास। शिविका की तेज आवाज सुनकर वहाँ खड़ी नर्स ने कहा, आराम से बोलिए, ये अस्पताल है, आपका घर नहीं। उस नर्स की बात सुनकर शिविका ने उसे लगभग खा जाने वाली नजरों से देखा। वो पहले ही ऋषभ पर नाराज थी और ऊपर से वो उसके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था, और वो नर्स भी उसे चुप रहने को कह रही थी। तभी करण उन दोनों के बीच आते हुए उस नर्स की तरफ देखकर बोला, सॉरी, हम अब ध्यान रखेंगे। शिविका ने दोनों हाथ सामने बांध लिए और दूसरी तरफ देखने लगी। नर्स भी उन सबकी तरफ एक नजर डालते हुए वहाँ से बाहर निकल गई। तब करण आगे आते हुए बोला, कोई बताएगा तुम दोनों में से कुछ, या फिर इसी तरह चुपचाप फर्श को घूरते रहने का इरादा है तुम दोनों का? करण की बात सुनकर ऋषभ ने हल्के से अपना सिर ऊपर उठाया और कहा, दीदी, वो कल रात जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी इतनी कोई गलती नहीं है, आप प्लीज मेरी पूरी बात ध्यान से सुन लेना, उसके बाद बोलना। शिविका ने बिना किसी भाव के कहा, हाँ ठीक है, मैं सुन रही हूँ, जस्ट स्टार्ट। करण ने बताना शुरू किया, वो कल रात को हम दोनों वहाँ उस नाइट क्लब से निकले तो वहाँ हाईवे पर हमारी कार खराब हो गई। उसके बाद शुरू होते ही शिविका ने बीच में उसे रोका, एक मिनट, तुम दोनों? कौन दोनों? और नाइट क्लब? कौन से नाइट क्लब? और क्यों गए थी तुम ऋषभ वहाँ? ऋषभ ने थोड़ा चिढ़कर उसकी बात का जवाब दिया, दोनों मतलब मैं और समर, और कोई दिख रहा है क्या आपको यहाँ पर? हम दोनों ही साथ में निकले थे वहाँ से, और आपको नहीं पता है क्या मैं नाइट क्लब क्यों गया था? मैं तो जाता ही रहता हूँ, मेरे लिए कौन सी नई बात है? लेकिन ये, इतना बोलकर वो समर की तरफ देखने लगा, क्योंकि उसे पिछली रात नाइट क्लब वाली बात याद आने लगी, किस तरह ऋषभ अपने दोस्तों के बहकावे में आकर जबरदस्ती ड्रिंक करने वाला था, और अगर वो उसे ना रोकता तो पता नहीं इस वक्त नशे की हालत में होता। ऋषभ की ये बात सुनकर शिविका से ज्यादा करण हैरान रह गया। उसने अपने भाई के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था। वो उसे एकदम अच्छा और जिम्मेदार लड़का समझता था, समझदार भी। वो कैसे नाइट क्लब पहुंच गया ये करण को समझ नहीं आ रहा था, इसलिए किसी और के बोलने से पहले उसने समर की तरफ देखकर पूछा, रियली समर, क्या ऋषभ सही कह रहा है? तुम मुझसे वहाँ नाइट क्लब में मिले थे, लेकिन क्यों? तुम वहाँ पर क्यों गए थे? तुम तो कभी भी ऐसी जगह पर नहीं जाते हो ना, और कौन से नाइट क्लब जो इतना दूर था कि तुम लोगों को हाईवे क्रॉस करके जाना पड़ा? करण के सवाल सुनकर समर ने माफी मांगते हुए धीमी आवाज में कहा, सॉरी भैया, मैंने आपको नहीं बताया इस बारे में, लेकिन कल मेरे एक दोस्त का बर्थडे था तो उसकी जिद पर मैं उसके साथ वहाँ पर चला गया, लेकिन उसने कहा था कि हम टाइम पर वापस आ जाएंगे, लेकिन थोड़ा लेट हो गया, और फिर वापसी में उसने इंसिस्ट किया कि वो मुझे ड्रॉप कर देगा, तो बस इतना ही हुआ था और कुछ नहीं। उसने अपने ड्रिंक करने वाली बात नहीं बताई और दोस्त के बर्थडे वाली बात भी झूठ बोली। उसके किसी दोस्त का बर्थडे नहीं था, उसके कॉलेज के दोस्त तो अक्सर बार और नाइट क्लब में जाते रहते हैं, लेकिन कल पहली बार ही उन्होंने समर को भी साथ चलने के लिए कहा था। एक्साइटमेंट में समर ने मना नहीं किया, लेकिन वहां जाकर उसे समझ में आ गया था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। करण बहुत निराश होकर समर की तरफ देखते हुए बोला, बट तुम इतने रिस्पॉन्सिव हो समर, मैं तो तुमसे ऐसी किसी भी चीज़ की उम्मीद नहीं करता। खैर कोई बात नहीं, पहली बार था तो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन अब अगर ऐसा कुछ भी हो तो तुम मुझे बता कर जाओगे कि कहाँ और किसके साथ जा रहे हो, साथ ही इतनी देर तक कहीं भी नहीं रुकोगे, घर से इतनी दूर तो बिल्कुल भी नहीं, इट्स नॉट सेफ। उसकी पूरी बात सुनकर समर ने धीरे से कहा, हाँ वो तो कल पता ही चल गया, लेकिन करण का पूरा ध्यान उसके बातों पर था, इसलिए उसने सुन लिया और पूछा, क्या मतलब है इस बात का, और कार खराब होने के बाद क्या हुआ, ऋषभ को इतनी चोट कैसे लगी? समर ने सबकी तरफ देखा इस उम्मीद में कि ऋषभ आगे बोलते हुए उन दोनों को पूरी बात बताएगा, क्योंकि समर को ये भी नहीं पता था कि क्या बताना है और क्या नहीं, इसलिए वो चुप था। समर के इस तरह देखने का मतलब समझते हुए ऋषभ ने बोलना शुरू किया, इतनी भी चोट नहीं लगी है मुझे, मैं ठीक हूँ, और कार खराब होने के बाद वो वहाँ हाईवे पर कुछ गुंडे? दरवाजे की तरफ से एक अजनबी सी आवाज़ आई, अरे मैं बताता हूँ आप दोनों को, बच्चे शायद थोड़ा घबरा गए हैं, आखिर कोई भी डर जाएगा जो कुछ भी कल रात इन दोनों के साथ हुआ। लेकिन वो आवाज़ सिर्फ करण और शिविका के लिए अजनबी थी। समर और ऋषभ तो उस आवाज़ को अच्छी तरह पहचानते थे, लेकिन फिर भी उन चारों ने एक साथ अपनी गर्दन घुमाते हुए दरवाजे की तरफ देखा। क्रमशः